इशिका और अभिमन्यु इस वक्त वसुधा के साथ उसके कमरे में बैठे हुए थे। वसुधा को दवाइयां लेने के बाद पुरानी बातें थोड़ी बहुत याद आने लगी थीं। इशिका कब से जानना चाहती थी कि उसकी और अभिमन्यु की शादी कैसे हुई थी, बस वही बताने के लिए वसुधा वहां पर बैठी हुई थी। इतने दिनों में वसुधा को कभी इतना क्लियरली सब कुछ याद नहीं आया जितना आज आ रहा था। वो उन्हें बताते हुए बोली, ये लगभग 2 साल पहले की बात है, मुझे तारीख ठीक से याद नहीं है। उस वक्त अभिमन्यु लंदन से 1 हफ्ते के लिए इंडिया आया हुआ था। अभिमन्यु भी याद करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे भी उनकी शादी याद नहीं थी। उसने उलझन भरी निगाहों से वसुधा की तरफ देखा। वसुधा ने आगे बताते हुए कहा, ये दोपहर की बात है, नींद से उठने पर अचानक मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं घर से बाहर निकल गई थी। चलते हुए बहुत आगे तक चली गई और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं नीचे गिर गई थी। मेरे हाथ और पैर पर इतनी जोरों से चोट लगी थी कि मैं उठ नहीं पा रही थी। ऐसे में कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मुझे अब वो दिन अच्छे से याद आ रहा है जब बहू तुम मेरी मदद के लिए आगे आई थीं। इशिका ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मुझे भी वो दिन याद आ रहा है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी था कि मैं आपकी हेल्प ना करूं, कोई इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। आपके ज्यादा चोट लगने पर मैं आपको हॉस्पिटल तक लेकर गई थी। इशिका को वो दिन तो याद आ गया था पर उनकी शादी याद नहीं आई थी। इशिका भी उस दिन की यादों में खो गई। नर्स ने उनके पैर का इलाज कर दिया था। वहां से जाने से पहले इशिका उनके पास आई थी लेकिन वसुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इशिका ने काफी प्लीडिंग वे में कहा, प्लीज दादी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे देर हो रही है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, वसुधा ने जवाब दिया। तो इशिका वहां पर रुक गई थी। कुछ पल रुककर वसुधा ने इशिका से पूछा, अच्छा बच्चे क्या तुम शादीशुदा हो? इशिका ने ना में सिर हिला दिया था। वसुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे कहा, मेरा एक पोता है जो उम्र में तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं है, दिखने में भी बहुत हैंडसम है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इशिका हैरान रह गई। उन्हें मिले हुए थोड़ा टाइम ही हुआ था और उस बुजुर्ग महिला ने उसे शादी तक का प्रपोजल दिया था। बेटा अगर तुम मेरी बहू बनोगी तो ये हमारे घर की खुशकिस्मती होगी। मैं तुम्हें अपने पोते की फोटो दिखाती हूँ, वो सच में बहुत हैंडसम है, थोड़ा घमंडी है पर दिल का अच्छा है, वसुधा ने कहा और जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर इशिका को अभिमन्यु की तस्वीर दिखाई। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैम मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। इशिका के मना करने पर वसुधा का चेहरा उतर गया था। उसने मायूसी से कहा, अच्छा ठीक है, जब भी तुम्हें शादी करनी हो तो तुम मुझे कॉल करना। मेरा पोता भी यही कहता है कि उसे शादी नहीं करनी है। उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत चिंता होती है कि वो लड़का पूरी जिंदगी अकेले कैसे रहेगा। बोलते हुए वसुधा ने अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकालकर इशिका को दे दिया था। इशिका ने चुपचाप उनका बिजनेस कार्ड ले लिया था। वो जानती थी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ लोग थोड़े अजीब हो जाते हैं, वैसे ही उसे वसुधा अजीब लगी, लेकिन साथ ही उसने उस बिजनेस कार्ड को बाहर आकर डस्टबिन में फेंक दिया था। वसुधा के बताने पर पुराने दिनों की बातें याद आने पर इशिका ने हल्के हैरानी से कहा, अच्छा तो उस दिन वो आप थीं? हाँ, देख लो मैंने पहली नज़र में तुम्हें पसंद किया था अपने अभिमन्यु के लिए और तुम मेरे ही घर की बहू बनी। अब इसे किस्मत कहें या फिर इत्तेफाक, पर मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई, वसुधा ने हल्का हंसते हुए कहा। इशिका हल्का हैरान थी और सारी बातें सुन रही थी। वसुधा ने आगे कहा, पहले मुझे लगा कि तुम कॉल नहीं करोगी और तुम्हारा कॉल नहीं आने पर मैं बहुत मायूस भी हुई थी, लेकिन 4 दिन बाद जब तुमने शादी के लिए हाँ कहा तो मैंने तुरंत इस लड़के को शादी के लिए मना लिया था। इतना कहकर वो कुछ पल रुकी और कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही बहू, कि तुम शादी के बाद गायब हो गई थी और वापस कभी नहीं आई, मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी वापस आओगी भी। इशिका ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसे अच्छे से याद था कि उसने कभी वसुधा को वापस कॉल किया ही नहीं था और ना ही शादी का कहा था। इशिका ने वसुधा की तरफ देखकर कहा, दादी क्या आपको अच्छे से याद है कि मैंने ही आपको कॉल किया था? अब मुझे आवाज़ याद नहीं है, लेकिन तुमने शादी के लिए हाँ कहा था तो तुम ही आओगी ना? तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट वैलिड है, दोनों एक साथ में गए थे तभी तो शादी हो पाई ना, वसुधा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इशिका अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी के भाव नहीं थे। इशिका ने अभिमन्यु से कहा, अच्छा मिस्टर राजवंश, मुझे अपनी शादी याद नहीं है लेकिन आपको भी शादी याद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिमन्यु के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। उसने वसुधा की तरफ देखा तो वसुधा ने जवाब में कहा, अच्छा ठीक है, मैंने इसके साथ एक खेल खेला था। बहू ये लड़का बाकी लोगों से काफी अलग है, शराब पीने के बाद में ये बिल्कुल आज्ञाकारी लड़का बन जाता है। मैंने इसे थोड़ी सी शराब पिला दी थी जिससे ये मेरी बातें मानने लग गया था। अभिमन्यु ने हैरानी से आंखें बड़ी की और कहा, दादी ये बहुत गलत है, ये तो अच्छा हुआ उस दिन इशिका वहां पर थी, उसकी जगह कोई और होता तो मैं क्या करता? अभिमन्यु की बात सुनकर इशिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अपने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, मतलब क्या है इसके कहने का कि अच्छा हुआ जो मैं थी। कौन सा दादी इसकी शादी हर किसी के साथ करवाने वाली थी? वसुधा ने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी बहू को पहली नजरों में ही पहचान लिया था। गिरने की वजह से मेरे कपड़े फट गए थे और मिट्टी भी लग गई थी। कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसका दिल अच्छा था तभी ये सबकी बातों को इग्नोर करके मेरी हेल्प करने के लिए आई। तुम्हें क्या लगा, मैं क्या ऐसे ही रोड पर चलती किसी लड़की को सिलेक्ट करके तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगी? अभिमन्यु और ऋषिका बिल्कुल चुप थे। वसुधा ने अभिमन्यु को छेड़ते हुए कहा, अच्छा अभिमन्यु, तुम अपनी पत्नी से खुश तो हो ना? अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो प्यार से ऋषिका के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने महसूस किया ऋषिका अभी भी काफी परेशान लग रही थी। अभिमन्यु ने ऋषिका से कहा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ, ऋषिका ने सिर हिलाकर कहा, दादी के बताने पर मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं कोर्ट गई थी, लेकिन मैं अपनी शादी के लिए नहीं गई थी, बल्कि मैं तो किसी और की शादी में एविडेंट के तौर पर गई थी। वो मेरी क्लासमेट थी, मैं अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर गई थी। हाँ, मैंने कुछ पेपर्स पर साइन किए थे, लेकिन उनमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है। इसका अंदाजा मुझे नहीं था, मुझे ये किसी की सोची समझी साजिश लग रही है। ऋषिका की बात सुनकर वसुधा के चेहरे के भाव भी सख्त हो गए थे। वो बोली, ये किसी की साजिश नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त भी आई थी, मुझे पता है, मैंने उससे तुम्हारे परिवार के बारे में पूछा था, तब उसने तुम्हारे परिवार के साथ फोटो दिखाई थी। इतना कहकर वसुधा ने फिर से ऋषिका को वही फोटो दिखा दी थी जिसमें ऋषिका राधिका के साथ थी, लेकिन वो फोटो फोटोशॉप की हुई थी। इसका मतलब कोई पहले से जानता था कि राधिका सिंघानिया में ही असली माँ है, ऋषिका ने धीरे से कहा। उसकी और अभिमन्यु की शादी किसी तरह का इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी और की सोची समझी साजिश थी। ऋषिका सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, तभी वसुधा ने कहा, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु और ऋषिका ने तुरंत उनकी तरफ देखा। ऋषिका ने पूछा, क्या आप इसका कारण जानती हैं?
वसुधा ने सिर हिलाया और कहा, मैंने टीवी सीरियल में देखा था, एक लड़की की डबल पर्सनैलिटी थी, उसे अपनी दोनों पर्सनैलिटी याद नहीं रहती थी, लेकिन हाँ, वो एक मानसिक रोगी थी, वो अपनी तरफ से दो जिंदगी जी रही थी। कहीं बहू, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही नहीं हो रहा? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ और हर साल अपना रेगुलर चेकअप करवाती रहती हूँ, ऋषिका ने जवाब दिया। उसने अपनी मेंटल हेल्थ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। मालविका के टॉर्चर करने पर वो काफी स्ट्रेस्ड हुई थी, इस वजह से ऋषिका नहीं चाहती थी कि उसे किसी तरह की मानसिक बीमारी हो। वसुधा और ऋषिका कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अभिमन्यु ने इस टॉपिक को खत्म करते हुए कहा, ठीक है ना, जाने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, शादी कैसे भी हुई हो, फिलहाल का सच ये है कि ऋषिका मेरी वाइफ है, अभी तक मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अगर आगे आई भी तो हम देख लेंगे। ऋषिका इस बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र दादी की तरफ गई जो काफ़ी परेशान और थकी हुई भी लग रही थी। शायद ऋषिका के इतना कन्फ्यूज होने पर वो घबरा गई थी कि कहीं ऋषिका अभिमन्यु को छोड़ ना दे। ऋषिका ने वसुधा का हाथ सहलाकर कहा, अभिमन्यु ठीक कह रहा है दादी, आप सो जाइए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, मुझे भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों कानूनी तौर पर शादीशुदा हो, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, दोनों हमेशा साथ रहना, वसुधा ने राहत की सांस लेकर कहा। उनके रिलैक्स होने पर अभिमन्यु और ऋषिका वहां से जाने को हुए। अभिमन्यु के उठते ही वसुधा ने ऋषिका का हाथ पकड़ लिया और अभिमन्यु से कहा, तुम अभी जा सकते हो, मुझे अपनी बहू से कुछ बात करनी है। अभिमन्यु थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ पूछा भी नहीं। वो दरवाजे से बाहर निकला ही था कि उसके कान में वसुधा की आवाज़ सुनाई दी। वसुधा ने ऋषिका से पूछा, अच्छा बहू, मुझे बताओ, तुम्हारा और उस लड़के का रिश्ता कैसा है? वो तुम्हें खुश तो रख पा रहा है ना? अब तो तुम दोनों साथ में सोते हो, वो बेड पर अच्छे से पेश आता है ना? इससे आगे की वसुधा और भी खुलकर बात करती, ऋषिका ने उन्हें चुप करवाते हुए कहा, दादी, वो अभी दरवाजे पर ही है। वसुधा की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और फिर वो बिना कुछ बोले बाहर चला गया। वहीं ऋषिका के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। अभिमन्यु के जाते ही ऋषिका ने कहा, दादी, अब वो चला गया है, आप बताइए किस बारे में बात करना चाहती हैं? वसुधा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे प्रणाली कपूर के बारे में बात करनी है। ऋषिका भी प्रणाली और अभिमन्यु के रिश्ते के बारे में जानना चाहती थी। अभिमन्यु ज्यादातर रात को गायब रहता था और वो जानती थी कि कहीं ना कहीं वो प्रणाली के पास जाता है। ऋषिका कभी अभिमन्यु से इस बारे में नहीं पूछ पाई, लेकिन वो चाहती थी कि अभिमन्यु खुद से आकर उसे सफाई दे। ऋषिका, तुम्हें लगता होगा कि अभिमन्यु कम बात करता है तो उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, लेकिन वो अलग टाइप का लड़का है, वो अपने रिश्तों की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है और उन्हें समझता भी है। मैंने तुम्हें उससे शादी करने के लिए कहा था, तब मुझे प्रणाली के बारे में पता नहीं था और मैंने तुम दोनों की शादी करवा दी। बाद में मुझे पता चला कि प्रणाली के साथ भी उसका एक खास रिश्ता है, वो तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भी वो कभी पीछे नहीं हटेगा। अब मैं नहीं जानती कि वो कैसे तुम्हारे और प्रणाली के साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करता है, पर प्लीज़ कभी उसे छोड़कर मत जाना। वसुधा काफ़ी प्यार से ऋषिका को समझा रही थी। उनकी बातों का मतलब साफ था कि शायद ही अभिमन्यु कभी प्रणाली की जिम्मेदारी से पीछे हट सके। ऐसे में इशिका को ही समझदारी दिखानी थी। इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो वसुधा ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी तरह के धोखे में रहो। मेरा पोता कभी तुम्हें चीट नहीं करेगा, इतना विश्वास रखना उस पर हाँ, प्रणाली ने उस पर जो एहसान किया है उसके बाद वो चाहकर भी उससे आज़ाद नहीं हो सकता। ठीक है दादी, मैं ध्यान रखूंगी। इशिका ने इतना ही कहा और फिर वसुधा को गुड नाइट बोलकर कमरे से बाहर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु जब कमरे से बाहर निकला तो उसे नकुल दिखाई दिया। वो शायद अभिमन्यु से ही बात करने के लिए आ रहा था। पहले अभिमन्यु को वसुधा की दवाइयों के लिए नायरा की जरूरत थी, इसलिए वो उनके आगे झुक रहा था। लेकिन अब जब इशिका ही डॉक्टर अनामिका थी और वही दवाइयों का इंतजाम कर रही थी तो अभिमन्यु को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से उनकी तरफ बढ़ रहा था। नकुल ने अभिमन्यु के पास आकर कहा, देखो नायरा ने जो भी किया उसे हमें भुला देना चाहिए। वो जिंदल फैमिली में शादी करने जा रही है और इससे हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होगा। हम उसकी शादी राजवंश विला से अरेंज करेंगे और ये एक लैविश शादी होने वाली है। हम उसे गिफ्ट के तौर पर शेयर्स देंगे। नकुल जिंदल फैमिली का नाम लेकर अभिमन्यु को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अभिमन्यु ने कहा, बेशक कीजिए, आपकी बेटी है और उसका हक भी बनता है। तो तुम तैयार हो? नकुल ने हल्का मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है जिससे आप अपनी बेटी की शादी और भी ग्रैंड तरीके से कर सकते हैं। बंटवारा कर लेते हैं, अपनी बेटी को गिफ्ट में 5% शेयर दीजिए या फिर आपके हिस्से के 10% मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभिमन्यु ने बेपरवाही से कह दिया। नकुल के पास कोई जवाब नहीं था। वो पैर पटकते हुए वहां से चला गया। अभिमन्यु अब किसी से झुकने वाला नहीं था। वो अच्छे से समझ पा रहा था कि अभी भी वो लोग उसे उसकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं। वहीं कमरे से बाहर निकलकर इशिका खोई हुई हालत में चल रही थी। उसने अपने मन में कहा, ये किसकी साजिश हो सकती है? कोई अच्छे से जानता था कि मैं राधिका सिंघानिया की बेटी हूँ और अभिमन्यु राजवंश कौन है। हम दोनों की शादी करवाकर किसी को क्या मिलने वाला है? मुझे इसका पता लगाना होगा।